وہی بیان جو پچھلی آیات میں اور پچھلے رکوع میں چلا آ رہا تھا وہی آپ دیکھیں گے اس میں، جو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو خطائیں تھیں، جو ان کے گناہ تھے، جو ان کی قصور تھے، ان کو ایک ایک کر کے گنوایا، فرد جرم جو ان پر اللہ تعالیٰ نے عائد فرمائی ہے ان دو رکوعات میں. ایک رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، ایک آج انشاءاللہ وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جو باقی کے ان کے اوپر جو ان کے کرائمز تھے، جرائم تھے، ان کی ایک لسٹ ہے سمجھ لیں، وہ اللہ تعالیٰ نے گنوا دی ہے. اور اس کے بعد بھی آگے کچھ ان کی جو غلط ان کے کام تھے ان کا ذکر آئے گا آگے بھی. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ آگے یہ چلتا جائے گا 14 رکوع تک ان کی باتیں، لیکن آگے کچھ ایسے یونیورسل ٹروتھس بھی ساتھ آئیں گے جو ہر ایک کے لیے جو وہ ہے. یہ کچھ اسپیسیفک باتیں یہاں پہ آئیں، جیسے اب منوسلوا کی بات آپ نے پڑھی ہے، باطلوں کے سائے کی بات پڑھی ہے، وہ تو کسی اور کے اوپر ایسا نہیں ہوا نا، یہاں پہ کافی اسپیسیفک باتیں ہیں. لیکن آگے جب انشاءاللہ اس رکوع سے آگے آپ چلے جائیں گے تو کافی وہ باتیں ہیں جو ان کے عقیدے کی خرابیاں تھیں، ان کے عقیدوں میں کیا کیا خرابیاں آ گئی تھیں وہ ہم ساری انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. آج کی جو ہم آیت پڑھیں گے پیچھے سے کیا ریلیشن شپ ہے، ہم نے پڑھا تھا منوسلوا کی بات پڑھی تھی. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سارے واقعات کسی ایک سیکوینس کے اس کے مطابق نہیں یہاں پہ بیان کیے گئے. ہم جو پچھلی آیت پڑھ چکے ہیں اس میں ایک قریہ میں داخل ہونے کی بات تھی اور کیسے داخل ہونا ہے وہ بھی بتایا گیا تھا. اب پھر واپس جائیے میدان تی میں. ہو سکتا ہے یہ بعض جگہ پہ لکھا ہوا ہے یہ میدان تی کا واقعہ ہے، بعض جگہ لکھا ہے صحرا سینا کا واقعہ ہے. باہر کیا ہے، آپ کو میں نے جیسے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل جب فرعون وغیرہ اس کی ساری آل ڈوب گئی سمندر میں، تو اس کے بعد بنی اسرائیل ان سے نجات پا کے دوسری طرف آ گئے. اور جب وہ دوسری طرف آئے تو اب یہاں پہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، منوسلوا کا بھی، بادلوں کا بھی، اور ظاہر ہے پانی کا بھی مسئلہ تھا. تو پانی کے مسئلے کا کیا ہوا وہ بھی انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے. مختصراً ان کی ہسٹری کو دیکھ لیں دوبارہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا تھا کہ 40 دیز تک یہاں پہ رہیں گے، جائیں گے جتنا انہوں نے ٹریول کرنا ہے. پھر اس کے بعد ان کا جو ایکچوئل جو ریئل ان کا کنٹری تھا وہ پیلسٹائن یا سیریا، یہ سارا ایک ہی علاقہ ہوتا تھا، تو یہ علاقہ تھا. یہاں پہ جا کے یہ اس علاقے کو فتح کریں گے اور یہاں پہ یہ رہیں گے، کیونکہ یہ یہیں سے آئے تھے، اصل وطن ان کا یہی تھا. لیکن کیا ہوا جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ یہ کام کریں. تو اس پر ان کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے ایک سزا ہوئی کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا تھا کہ اگر یہ انٹر ہوتے اس شہر میں اور حملہ کرتے وہاں پہ لڑتے تو فتح ان کی تھی، ان کو یہ ملک مل جانا تھا. لیکن یہ اتنے بزدل تھے، اتنے یعنی تھوڑ دلے تھے کہ انہوں نے بالکل انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کی ان کو یہ سزا دی کہ 40 سال تک یہ ایک میدان میں گھومتے رہے پریشان. 40 سال تک، ایک دو دن کی بات نہیں ہے. اور یہ میدان کوئی بہت بڑا رقبہ نہیں تھا، ایجپٹ اور وہ سیریا کے درمیان ہی، پیلسٹائن سیریا سارا ایک ہی علاقہ تھا نا، میں نے آپ کو بتایا، ایجپٹ اور اس کے درمیان یہ تقریباً 10 مائلز کا ایک ایریا تھا جس کو کہتے ہیں میدان تی، تا یا اور ہا، تی حلوے والی ہا نہیں ہے، دوسری. تو میدان تی میں یا وادی تی جس کو کہتے ہیں، تی کا مطلب ہے پریشان سرگرداں رہنا. تو یہ ایک وادی تی میں ایک بس میدان سا تھا، نہ وہاں پہ کوئی درخت تھا، نہ وہاں پہ کوئی بلڈنگ تھی، نہ دھوپ سے بچنے کا کوئی طریقہ تھا، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان تھا، نہ پہننے کے لیے کچھ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ یہاں پہ کیسے لاسٹ ہوئے، سبحان اللہ، اللہ کی قدرت ہے، وہ جس کو چاہے راہ دکھا دے اور جس کو چاہے ایسا گھما دے، سبحان اللہ. کے یہ دن بھر سفر کرتے تھے और रात को जब किसी मंजिल पर उतरते, अंधेरा हो जाता था, पता थोड़ी चलता था कहाँ पहुंचे। रात को उतरते थे, सुबह उठते थे तो देखते थे जहां से चले थे ना वहीं पे खड़े हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह ही रब्बी, 40 ईयर्स तक ऐसे ही ये परेशान इस मैदान में ही फिरते रहे। अल्लाह जिसको चाहे तो देखो कैसा घुमा दे कि इंसान इस तरह लॉस्ट हो जाए कि उसको समझ ही ना आए जाना कहाँ। 40 साल तक वहीं चक्कर लगाते रहे, कैसी अल्लाह की तरफ से सजा आई। कभी हमारे साथ ऐसे होता ना, हम अच्छे भले पता होता है लेकिन बस घूम घूम के गाड़ी फिर वहीं आ जाती है, फिर वहीं आ जाती है, समझ ही नहीं आती। जैसे एक उसमें इंसान ना स्पाइरल में ही फंस गया। तो ये 40 ईयर्स तक इस तरह से रहे, एक दो दिन की बात हो तो फिर भी है, हर सुबह होती थी वहीं पे होते थे। हत्ता कि पूरी इनकी जो जनरेशन थी, जो फिर उनसे निजात पा के आए थे, वो सब मर गए, सब मर गए, सब खत्म हो गए। और नई जो नस्ल इनकी थी, जो बच्चे पैदा हुए थे, वो बड़े हुए। 40 ईयर्स इसमें जाहिर है लगे, तो वो बड़े हुए तो फिर उन्होंने जाके वो, फिर उनको कहा गया जाओ उस इलाके में दाखिल हो, वो गए और फिर उन्होंने वो इलाका फतह किया। तो ये जो हमने पिछली आयात पढ़ी थी, वो दो उसमें रिवायात हैं। ये भी कहा जाता है कि ये उसी के लिए है कि जब ये न्यू जनरेशन वहां पे गई और उनको कहा गया कि तुम जाओ यहाँ से इस करिए में दाखिल हो जाओ, फिर खाओ पियो, लेकिन देखो इस तरह से दाखिल होना सिद्धा करते हुए। तो वो भी ऐसे ही थे, वो भी उन्होंने किस तरह से चेंजेस की। और इसके बारे में एक और भी वाकया आता है कि हो सकता है ये उस वक्त का वाकया ना हो बल्कि एक और दफा का वाकया हो, वो इंशाल्लाह आज की जब हम आयात देखेंगे तो उसकी तफसीर में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी ये कौन सा एक वाकया हो सकता है। तो अब ये खाने पीने का उनका प्रॉब्लम तो हल हो गया, मनो सलवा उतर रहा है, अब पीने का क्या करें, पानी का क्या किया जाए। तो देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ इस्तस्का मूसा लिकौमिही, और जब पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए। अब आप ये देख लें, देखिए ये ऐसी कौम थी कि जब इनको पानी का मसला हुआ ना, तो ये मूसा अलैहिस्सलाम के पास फिर दौड़े गए और बड़ी शिकायतें करने लगे कि ये आप पानी और हम पानी का क्या करें और अब हम प्यासे हैं। और ये तो अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पानी मांगा, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया फकुल न दुरिबी असा कल हजर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने कहा, हमने किसने, अल्लाह ताला ने, मारो अपना आसा इस पत्थर को। अच्छा आप देखें, आसा मूसा अलैहि सलाम के पास ऑलरेडी था और आसा के जरिए उन्होंने समंदर को फाड़ा था, आसा ही सांप बन जाता था, आसा से ये बड़े काम लेते थे, तो वो खुद भी मार के देख सकते थे। लेकिन बात ये है, एक बात बहुत पते की यहाँ समझ आती है कि आसा इटसेल्फ कुछ नहीं था जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो आसा मारा तो समंदर फट गया, और जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो आसा मारा हैजर पे तो फन फजरत मिन हुस्नत आशरत आइनन, तो उसमें से फूट पड़े 12 चश्मे। तो बरकत उस आसा में नहीं है, बरकत अल्लाह के हुक्म से होती है। अल्लाह ताला का हुक्म हो तो पानी फूट निकलता है, आसा मारने से भी पत्थर में से निकल आएगा, और अल्लाह का हुक्म ना हो तो लोग पानी के लिए तरसते फिरेंगे और पानी की एक बूंद भी नहीं नजर आएगी। तो इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो इस बात से हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि किसी चीज को भी हम ये ना सोचें कि ये हाँ जी ये चीज मुतबर्रिक है और ये चीज ऐसे है। अल्लाह ताला के हुक्म से ही कोई काम होता है, कोई चीज खुद से फायदा नहीं पहुंचा सकती किसी को, किसी चीज का अपना कोई कमाल नहीं होता। तो इसमें से 12 चश्मे फूटे, 12 क्यों फूटे, 12 की क्या जरूरत थी। 12 इसलिए कि ये 12 कबीले थे ना, आपको पता है याकूब अलैहि सलाम के तो 12 बेटे थे, तो ये 12 बेटों की नस्ल ही तो थी जो आगे से ये कबाइल बने। तो उन हर एक ट्राइब के लिए, हर एक कबीले के लिए अल्लाह ताला ने एक चश्मा जारी फरमा दिया। अब हो सकता है आपके जहन में ये बात आए कि भाई वो चश्मा तो वहां पे फूट पड़ा, फिर वो आगे गए तो फिर आगे क्या हुआ, ये चश्मे तो एक ही जगह रह गए ना। कहते हैं आज भी इन चश्मों के सुराख पत्थर में मौजूद है वहां पे जहां से ये 12 चश्मे फूटे थे। तो इसके बारे में बहुत सारी रिवायात आती हैं, जस्ट आपकी एक दिलचस्पी के लिए बता देती हूँ, अदरवाइज इससे हमें कोई भी हमारे अमल को नहीं फर्क पड़ता कि वो कैसे उनका पानी आगे गया। कि एक इब्ने अब्बास से एक रिवायत है कि पत्थर जो था वो इतना सर के बराबर, इंसान के सर के बराबर बड़ा था, तो वो पत्थर उठा के ले जाते थे और जहां पे वो पत्थर रख देते थे तो फिर से चश्मे फूट पड़ते थे, फिर पानी ले लिया करते थे। इस तरह से जैसे चलते जा रहे हैं और साथ फिर पानी भी इनका अल्लाह ताला ने इंतजाम फरमा दिया। तो देखें क्या हुआ, कद आलिमा कुल्लु उनासिन मशरबहुम, तहकीक जान लिया हर लोगों ने, हर ग्रोह ने, मशरबहुम अपने पीने की जगह को, यानी बच्चा बच्चा जानता था कि उसके पीने की जगह कौन सी है। सोचें जरा कितनी ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी और कितना डिसिप्लिन था कि हर एक, इतना बड़ा काफिला है लेकिन हर एक को पता है अल्लाह ताला ने 12 चश्मे इसलिए वहां से जारी किए थे कि आपस के अंदर इनके कोई भी फसाद झगड़ा ये ना पैदा हो, क्योंकि ये पानी वगैरह है ना, इसके ऊपर बहुत झगड़े होते हैं, तो इसके ऊपर ना कोई झगड़ा हो, इस वजह से अल्लाह ताला ने 12 चश्मे वहां से जारी फरमा दिए और हर एक को पता है कि मेरा पानी पीने की जगह क्या। अब इससे हमें उनकी ऑर्गेनाइजेशन का भी इल्म होता है कि वो कितने ऑर्गेनाइज थे। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि वहां पे कोई बड़े भी चश्मे थे, छोटे भी चश्मे थे, तो जिन कबाइल के अंदर ज्यादा अफराद थे, जो बड़े बड़े कबीले थे, उनके लिए बड़ा चश्मा था, छोटे के लिए छोटा था। ये भी कहा जाता है कि हर एक कबीला इस तरह जान गया था कि एक एक आदमी पत्थर के पास खड़ा रह जाता, लकड़ी लगते ही इसमें से चश्मा जारी हो जाता तो ये चश्मा उसका होता। ठीक है, वो अपने कबीले को बुला के कह देता कि ये चश्मा हमारा है। और आप आगे इंशाल्लाह ताला सूरह आराफ में भी इस वाक्य का बयान आएगा, आप आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसी वाक्य को। अच्छा, तो इससे देखिए एक बात बड़ी दिलचस्प है कि सुभान अल्लाह, उनके तो एक एक बंदे को पता चल गया कि हमारा मशरब कहाँ है, लेकिन पानी और इल्म में ना बड़ी मुमासलत है। पानी के जारी हो ना, और इल्म, इल्म भी पानी की तरह ही है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुलू, खाओ, व शरबू, और पियो, मेरे रिस्क अल्लाह, अल्लाह के रिस्क से, यानी अल्लाह ताला ने ये तुम्हारे खाने पीने के लिए ही जारी किया, खाओ मनो सलवा और पियो इस पानी को, इससे मना नहीं किया गया, खाने पीने से अल्लाह ताला मना नहीं फरमाते। देखे ये बात बड़ी समझने की है कि बस दफा हम दीनदारी इख्तियार करते हैं या बड़े तकवा वाले बनते हैं तो हम क्या समझते हैं कि हम बस खाने पीने को हम जो है ना छोड़ देंगे तो ये तकवा है, या ना हमने अच्छा खाना है ना अच्छा पहनना है तो इसका मतलब बस मैं नेक हो गई। अल्लाह ताला आपको खाने पीने से थोड़ा ही रोकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने किस चीज से रोका है कि खा पी के क्या ना करो फिर, वला तअथौ फिल अर्दी मुफ्सिदीन। असल में खा पी के जब इंसान का पेट भर जाता है ना तो फिर क्या होता है, फसाद करता फिरता। खाली पेट इंसान को फसाद नहीं सूझते, जब भरा पेट भी शैतान का घर हो जाता है फिर वो फसादी बन के फिरता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया खाओ पियो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिस्क दिया और ये मेरे रिस्क ला है, अल्लाह के रिस्क से, यानी ये रिस्क जो है ना ये तुम्हारी अपना कोई कमाल नहीं है, अल्लाह की तरफ से ही मिलता है। लेकिन याद रखना तुम जमीन में फसादी बन के ना फिरो। फसाद कैसे होता है, फसाद ऐसे होता है जब इंसान किसी पे जुल्म करता है, किसी को उसका हक नहीं देता, खराबी पैदा करता है तो फसाद करते फिरते हैं। तो फसाद में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, इसमें इंसान जब नाशुक्री करता है, हिर्स करता है, लालच, बेसब्री करता है, तकब्बुर करता है, ये सब फसाद की किस्में हैं। नाशुक्री भी फसाद है, याद रखिए। जब इंसान जिसका दिया हुआ खाता है उसका शुक्र ना अदा करे तो वो फसाद है। जब इंसान सबर ना करे ये भी फसाद है। जब इंसान कनाट नहीं करता, जितना उसको मिला है उसके ऊपर नहीं और की हविस रहती है तो ये फसाद बर्पा करता है। जब इंसान के अंदर खा पी के आजी ना आए तो ये फसाद है। तो उनको मना किया गया, तुम खा पी सकते हो, खाना पीना मना नहीं है, मगर याद रखो फसाद ना करना। हम खाने पीने में तो कमी कर लेते हैं, लेकिन फसाद इंतहा दर्जे का, जमीन में फसाद कर रहे हैं, घर घर में फसाद है। बाज लोग फसाद करवाने के लिए और फिर ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ऐसे भड़काते हैं कि फसाद पैदा हो। तो फसाद करने से, फसाद मचाने से मना किया अल्लाह ताला ने।